नमस्कार। आज के मार्गदर्शन कार्यक्रम में मैं अर्चना सिंह आपका पुनः स्वागत करती हूँ। मित्रों, कहते हैं कि किसी घर में बुजुर्ग का होना उस घर के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अनुभवों की एक बड़ी पूंजी लिए बुजुर्ग अपने आप में एक पाठशाला होते हैं। बावजूद इसके युवा पीढ़ी उनका मूल्य तब तक नहीं समझ पाती जब तक वह खुद उस उम्र में नहीं पहुंच जाती। आज हमारे स्टूडियो में आदरणीय बुजुर्ग जन आए हैं जिनके जहन में है कई सवाल, जिनके उत्तर देंगी आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विदर्भ क्षेत्र की सब जोन संचालिका हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछेंगे अरुण रड़के जी।
सुखी जीवन जीने का कौन सा मार्ग है? अकेला रहता हूं तो कभी कभी मुझे ऐसा तनावग्रस्त महसूस होता है अकेले रहने के कारण। ये जानना चाहता हूं कि मैं किस तरह से सुखी जीवन अपनाऊं, तो इसका क्या सुखी जीवन जीने का कौन सा मार्ग है?
आपकी मनोस्थिति ठीक रहे उसके पर विशेष आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आयु इसकी आवश्यकता होती है किसी के आधार की, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में वो मिल नहीं पाता है। वो सोच करके भी मनुष्य दुखी हो जाता है, पर उस सोच से कोई लाभ नहीं। आप स्वयं को व्यस्त रखने का प्रयास करो, ऐसा एक लक्ष्य रखो, मैं अपने दिन की दिनचर्या ऐसे बनाऊं जिससे मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो और मन भी प्रसन्न रह सके। इस आयु में वॉकिंग, एक्सरसाइज, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। कुछ समय आप उसमें अपना देंगे और कुछ समय आप आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने में समय लगाएं, क्योंकि कार्य जो करना था वो आपने जीवन में कर लिया, फर्ज अदाई पूरी कर ली। वैसे भी कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था में भगवान को याद करना चाहिए, तो आज अपना मन का रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ें। मन के बात उनसे कहें, अपना दिल भारी नहीं करें, और कुछ ऐसे सत्संग से जुड़े, ऐसी संस्था से जुड़े जो कि आपके मन को शक्तिशाली, ज्ञान और श्रेष्ठ विचारों का आपको सहयोग दे सके। उसमें जब समय बिताएंगे तो फिर आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा और मन में कभी चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा, क्योंकि अधिकतर इस आयु में चिड़चिड़ापन ज्यादा आ जाता है। तो जब हमारा मन प्रसन्न है तो क्यों चिड़चिड़ापन आएगा? तो इसलिए ये समय आपका ईश्वर भक्ति कहो या वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान कहो, वो प्राप्त करने का समय है। तो आप देखेंगे आप अपने तन को भी स्वस्थ और मन को भी स्वस्थ रख सकेंगे।
मुझे लगता है कि दीदी जी ने इनकी समस्या को पूरी तरह समझते हुए दो तीन बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिए हैं। ये सही समय है कि जब हम जो काम हम पूरे जीवन भर गृहस्थ जीवन के समय ना कर सके, आध्यात्म से जुड़ने का, ईश्वर को याद करने का, वो करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। साथ ही समाज के साथ, कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ के अपने अकेलेपन को बांटा जा सकता है, समाज को अपना योगदान दिया जा सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि अगला सवाल क्या है, इसे पूछना चाहते हैं मधुसूदन अलकरी जी।
मेरा नाम मधुसूदन अलकरी, मैं टेलीफोन विभाग से असिस्टेंट जनरल मैनेजर पद पर रिटायर हुआ हूं। नागपुर में ही वर्धा रोड पर रहता हूं। पारिवारिक जिम्मेदारियां सब खत्म हो चुकी है। मेरा सवाल यह है कि आज की जो पीढ़ी है उसमें संस्कारहीनता दिखती है, क्या उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं? हमारी पीढ़ी उसके लिए जिम्मेदार है? ऐसा कुछ मेरे मन में आता है कि क्या हम संस्कार करने में कुछ हमारी कमी हुई क्या?
अगर देखा जाए सुसंस्कार जो एक मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, सुसंस्कार एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है या कहे एक बहुत वैल्यूज है। सुसंस्कारी बच्चा जो होगा वो गुणवान जरूर होगा, उल्टे मार्ग पर वो भटका नहीं होगा, पर वो देने के लिए जब वो बच्चे छोटे हैं उस समय से ही उनके अंदर अगर हम सुसंस्कार रखते हैं, श्रेष्ठ संस्कारों को भरते हैं, तो बड़ा होने के बाद भी उसी प्रकार के उनके विचार संस्कार बनते हैं। पहले समय में इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि अपने घरों में कहते थे भगवान के ही चित्र होने चाहिए, परंतु आज क्या है भगवान के चित्र तो बहुत कम दिखाई देते हैं, फिल्म एक्टर्स की ज्यादा दिखाई देते हैं, वो भी उनके संस्कारों के पर इफेक्ट डालते हैं। तो इतनी जवाबदारी वास्तव में बड़ों की बुजुर्गों की है। पहले समय में बहुत सुंदर सुंदर आध्यात्मिकता से भरी हुई कहानियां भी सुनाते थे जिससे भी उनके बच्चों के संस्कार अच्छे बनते थे। तो इसलिए आज के भी युग में जो हैं, आज की परिस्थितियों में उनको ये जरूर प्रेरणा दें ताकि भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है कम से कम वो सुसंस्कारी बने। जो कमी अगर रह भी गई है तो उस कमी को वो भर सके। कभी भी जहां तक हो उनको हम थोड़ा विशेष ध्यान दे करके स्नेह का वातावरण दें ताकि वो बुजुर्गों से दूर न हो, क्योंकि बुजुर्गों के अनुभव उनको सही रास्ता दिखाते हैं। आज आपको वो दिखाना है। जहां पर बुजुर्गों की शिक्षा अनुभव भरी होती है तो वो भी सचेत हो जाते हैं। जैसे एक बार एक राजा ने कहा कि राख की रस्सी बनाओ, कोई नहीं बना सका, पर एक बच्चे का पिता से प्यार था, बुजुर्ग थे, बुजुर्गों से पूछा राख की रस्सी कैसे बनाऊं, कहा बेटा ये बहुत सहज उपाय है, एक काम करो एक ट्रे लो रस्सी रखो उसको जला दो, क्या होगा राख बन जाएगी, उसका आकार कौन सा रहेगा रस्सी का ही रहेगा। तो ये युक्ति अनुभवियों ने बताई, पर आज की पीढ़ी को उतनी उस चीज का वैल्यू कहा जाए वो कम हो गई। तो इसलिए अभी कम से कम जितना हो मेहनत करके हम प्यार दे करके उनको समीप ला करके गाइडेंस देते रहें, अपने अनुभवों का उनको लाभ देते रहें।
जो पीढ़ी अब पक चुकी है, युवा हो चुकी है, उसके संस्कार हो चुके हैं, लेकिन अब जो उनके बाद की पीढ़ी है उसकी ओर ध्यान दें, उनके संस्कारों की ओर ध्यान दें और युवा पीढ़ी को जितना हो सके अपने स्नेह के जरिए अपने पास लाने का प्रयास करें। देखते हैं अगले सवाल में अरविंद ओझरकर जी क्या पूछना चाहते हैं।
मेरा सवाल है कि वृद्धों ने अपनी जीवन शैली कैसी बिताना चाहिए?
न्यारा और प्यारा, वो स्टेज हमको बनानी चाहिए। अगर हम बच्चों को बार बार बोलते रहेंगे ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, हमने ये नहीं किया, तो वो असर उन बच्चों पर नहीं पड़ता है। कहेंगे आपने अपने जमाने में किया, आज का जमाना दूसरा है। तो इसलिए वह उदाहरण न देते हुए अगर कहीं वो गलत कर रहे हैं, प्यार से बिठा करके उनको अटेंशन खिंचवाओ। दूसरी चीज हम देखते हैं, जैसे एक न्यारे और प्यारे के ऊपर हम आपको बात बताएं। जैसे सब जो आज कटहर की सब्जी आप लोग तो खाते ही हो, खाते ही, और उसको चाकू से ही काटा जाता है, चाकू से काटिए तो उसके अंदर से दूध निकलता है, चाकू पर भी चिपक जाता है, काटने में भी कठिनाई होती है। इसलिए बहने माताएं पहले सावधानी रखती, चाकू को साफ करती है, उसके पर तेल लगाती है, उसके बाद वो कटर काटती है तो इजी कट जाता है, क्योंकि तेल वो चीज है जो किसी से अटैच होने नहीं देती है। ऐसे जीवन के अंदर सरल स्वभाव, ईगो ना हो, कभी कभी बके बाल का भी अभिमान आ जाता है, बोल भी देते हैं मैंने कोई धूप में बाल सफेद नहीं किए, वो अभिमान हमको सरल चित्त बनाने नहीं देता, न्यारा प्यारा रहने नहीं देता, इसलिए कई बार कठिनाई होती है। वैसे भी ये समय प्रभु चिंतन का है, प्रभु चिंतन करिए। ये भी कहावत है, दो रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। अपनी दिनचर्या जैसे पहले बताई उसमें व्यस्त रखिए, सरल स्वभाव रखिए, बच्चों पर प्यार बांटिए। कोई भी अगर बच्चे ने कुछ ऐसा किया तो अपने टेंशन को अपने मन में मत निर्माण करो, तो इस जीवन शैली से जिएंगे तो बहुत सुखमय जीवन बिता सके।
बड़ी ही सरलता से आपने इतने मुश्किल सवाल का जवाब दिया, दो रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, सबसे आसानी से सबसे सुखमय अपना वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने का ये बड़ा ही सुखद मार्ग दीदी जी ने हमें बताया। अगला प्रश्न पूछेंगी अनघा देशकर।
कभी कभी बहुत असमंजस में पड़ जाती हूँ मैं, क्योंकि घर परिवार और समाज में विपरीत परिस्थितियां जो चल रही हैं उसमें अचल और अडोल कैसे रहे, ये प्रश्न बार बार घूमते रहते हैं मन में।
मन में हलचल कब पैदा होती है? जब हम उन बातों की तरफ अधिक ध्यान देते हैं, उसके पर पुनः 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 विचार करते रहते हैं। रात गई बात गई, वो स्लोगन हम प्रैक्टिकल जीवन में कहीं पक्का नहीं कर पाते। कहते भी हैं बीती ताही विसार दे आगे की सुधले, तो जो हलचल का कारण परिस्थिति नहीं होती है, हलचल का कारण हमारा सोच होता है। अगर समझो किसी ने कुछ किया, अपने संस्कारोंवश किया, या कोई मेरे सामने ऐसी घटना आई, मेरे कुछ पिछले कर्मों का हिसाब किताब था, वो मेरे सामने आ गए। क्योंकि कर्मों का हिसाब जो हम करते हैं वो भोगना जरूर पड़ता है। इसीलिए गीता में कहा गया है, कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। मानो कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, पर जब वो बातें सामने, उसका फल सामने आता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो पिछले किए कर्मों का कोई मेरे सामने फल आया, पिछले के कारण वर्तमान बिगड़ा, वर्तमान को मैं सुधारूं तो भविष्य सुधरेगा, तो मैं हलचल में क्यों आऊं? इसके लिए अपने को कहा जाता है संकोच से, सोच से परे करने का प्रयास करें। जिसके लिए फिर भी कहूंगी, साक्षी दृष्टा होके देखे। जैसे हम ड्रामा के अंदर कैसे जाते हैं, वो रोल करते हैं, कोई गुस्सा कर रहा है कि हमें गुस्सा आता है, कोई अहंकार दिखा रहा है कि हमको आता है, क्या हम उससे टक्कर लेते हैं, समझते वो अपना पार्ट बजा रहा है, या हम क्यों क्या में आ जाते हैं, ये परिस्थिति क्यों आई, इसने से क्यों कहा। पर हम अपने आप से पूछे, वो अपना पार्ट बजाए, मैं क्यों उसके ऊपर सोचू, मैं क्यों सोचती हूं, जो औरों के प्रति क्यों क्यों करते हो वो स्वयं के प्रति करिए। अच्छा, दूसरा, अगर किसी की भूल है उसको न सोच करके पर उसको सुधारूं कैसे, उस व्यक्ति को एक सुधारने का मौका दीजिए, उसको सर्टिफिकेट मत दीजिए कि तुम ऐसा ही करते हो, उसको बुलाइए, बिठाइए, स्नेह दीजिए, ये बहुत बड़ी कुंजी है किसी के दिल को जीतने की। उसके बाद उसको प्यार से समझाइए, राह दिखाने का काम करिए, ना कि अपने मन को ही उल्टी राहों पर भटका दीजिए।
मन में हलचल पैदा करने का सबसे बड़ा कारण जो है वो आपकी अपनी सोच है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सोच सोचकर इस चिंता में पड़कर ज्यादा परेशान होते हैं। उससे बेहतर हो कि वर्तमान में रहे, वर्तमान को सुधारने का प्रयास करें। मुझे लगता है अनघा जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल पूछना चाहते हैं जी एन मरघड़े जी।
मेरा नाम ज्ञानेश्वर मरघड़े है, मैं नागपुर से हूं। मेरा सवाल है कि मनुष्य के जीवन में कई बार बड़े बड़े आघात हो जाते हैं, सदमे पहुंचते हैं, उन सदमों से उभरने के लिए, क्योंकि उस समय मन काफी अशांत होता है, काफी तनावग्रस्त रहता है, उस तनावग्रस्त मन को शांत करने के लिए क्या कोई सुलभ ध्यान है या दूसरा कोई मार्ग है?
उसके लिए सबसे सुलभ से सुलभ मार्ग है राजयोग, मेडिटेशन, मन की एकाग्रता। क्योंकि जब हमारा बुद्धि योग परमात्मा के साथ होगा तो सब उलझने सहज समाप्त हो जाएंगी, और कोई भी बात अपने को पर बोझ मत रखे, बोझ लेने वाला परमात्मा बैठा है, उन पर छोड़ दो, वो आपे सिमट जाएगी। तीसरी बात, मन में ये रखो कि सभी दिन समान नहीं होते हैं। आज अगर दुख की बात आई है, कल सुख की भी आएगी, आज रात है कल दिन आएगा, तो इसलिए आने वाले सुख की घड़ियों का इंतजार करो, उस समस्या के ऊपर ज्यादा चिंतन न करके स्वचिंतन में जाओ, आत्मचिंतन में जाओ। जहां स्वचिंतन है, आत्मचिंतन है, जहां प्रभु चिंतन है, वो हमारी बुद्धि को ऊपर ऊपर ले जाता है। जैसे समझो अगर हम प्लेन में बैठे हैं तो नीचे का बहुत बड़ा शहर भी हमको कैसे दिखाई देता है, बड़े बड़े पहाड़ भी हमको कैसे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे। तो अगर हम आत्मचिंतन परमात्म चिंतन में होंगे तो ये इस दुनिया की बातें बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी दिखाई देगी, फिर हम परेशान नहीं होंगे।
तो बड़ी बड़ी समस्याओं से निपटने का या उनमें संभलने का एक तरीका है कि हम परमात्मा के जरिए अपनी सोच को इतना ऊपर ले जाएं कि बड़ी से बड़ी समस्या हमें छोटी नजर आने लगे और हमें ताकत मिले उनसे निपटने की, उनका सामना करने की। अगला सवाल पूछना चाहते हैं केजी जोशी जी।
मेरा सवाल यह है कि क्रोध और शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि अभी ये देखने में आ रहा है कि छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी नाराजगी आ जाती है। बच्चों से अभी तो नाती हो गए हैं, लड़के तो कभी बोल के जाते नहीं हैं, नातियों से पूछो कि कहां जा रहे हो तो बोलेगा मैं अभी आता हूं, तो थोड़ा सी नाराजी रहती है।
बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि क्रोध कोई भी एज में आ सकता है, केवल वानप्रस्थियों में आता, ऐसा नहीं है। पर अभी हम देखते हैं क्रोध आने का कारण, जब कारण मिलेगा तो उसका निवारण सहज हो जाएगा। कारण है जिनके भी हम संबंध में संपर्क में आते हैं, हम उनकी कमियों को देखते हैं, उनके अवगुणों को देखते हैं। ये एक नेचर, जैसे ये आंखें बाहर का दृश्य सहज देख लेती हैं, या ये कान बाहर की बातें सुन भी लेते हैं, तो जब आंखें देखती हैं कान सुनते हैं, ये दो इस्तेमाल होते हैं, तो हमको अंदर क्रोध पैदा हो जाता है। क्यों? उनके दूसरे की कमियों को देखा। क्रोध दूसरे पर आता है, अपने पर नहीं आता है। परंतु अगर हम अपने मन से देखें, अभी मन को यूज करें, दो अंग यूज कर रहे हैं, तीसरा है मन जो आत्मा का अंग है, उसको इस्तेमाल करें कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में है क्या उसके अंदर कोई गुण भी है, उसके अंदर कोई विशेषता भी है। बस एक हम युक्ति अपनाएं, अवगुण ना देखें, गुण देखना शुरू कर दो, क्रोध खत्म होगा। एक बार की बात है, एक कपल हमारे पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सामने आए। उन्होंने कहा, उन्होंने भाई ने कहा कि मेरे को बहुत क्रोध आता है, हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में। ये बोल करके अपनी पत्नी की कमियों को बताने लगा, ये ऐसा करती है, ऐसा करती है, ऐसा करती है। बाबा केवल मुस्कुराते रहे, सुनते रहे, एक भी रिप्लाई नहीं दिया। पर देखा गया जैसे वो अपनी पत्नी की कमियां बता रहा था, उसके चेहरे में वो जोश, वो नफरत, वो भरती जा रही थी, बढ़ रहा था। जब पूरा सुना दिया, बाबा ने पूछा, 10 बच्चे? बोला का, अच्छा बच्चे एक बात बताओ, इस बच्ची में, बाबा के लिए तो बच्ची हुई ना, उनकी पत्नी है, तो भी इस बच्ची में कोई गुण भी है, विशेषता भी है? तो वहां वो सोचने लग गया, क्योंकि आज तक वो उसका दृष्टिकोण उधर गया ही नहीं था। ये प्रैक्टिकल की मैं बात सुना रही हूं बात, तो उस समय में वो सोचने लगा, सोच करके एक गुण बताया। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे और, फिर और सोचा, कमियां नॉन स्टॉप बता रहा था, और जब विशेषताएं गुण पूछा तो वहां वो रुक रुक करके बताता रहा, बाबा और कहते रहे। पर उस समय हमने क्या देखा, जो भी दूसरे भी बैठे थे सामने में, उसके चेहरे में जो नाराजगी से भर गया ना, पहले कमियां बताते, वो थोड़ा थोड़ा प्रसन्नता की ओर बढ़ता गया। तो देखिए, कमियां देखी तो हमारे मन पे वो असर हुआ, गुण देखे तो प्रसन्नता मिली, प्रसन्नता मिली तो क्या क्रोध आएगा? नहीं आ सकता। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये एक फार्मूला अपना लो, दोनों ही एक दो के गुण देखो ना कि कमी, फिर आपका झगड़ा नहीं होगा। सचमुच उन्होंने वो ही किया, जीवन परिवर्तन हो गया, या अशांति थी वह शांति आ गई, आनंद आ गया, सुख आ गया, प्रेम आ गया। तो आज हमारी दृष्टि सदा अवगुणों की ओर जाती है, गुणों और नहीं। इसलिए हम अपना दृष्टिकोण बदलें तो बात बात पर किसी पर भी हमें क्रोध रंजश ये नहीं आएगी।
क्रोध पे अगर काबू पाना है तो जरूरी है कि जिस पे क्रोध आ रहा है उसके अवगुणों की जगह उसके गुणों पर अपने ध्यान को केंद्रित किया जाए। देखते हैं ज्योति भालेराव जी क्या सवाल पूछती हैं।
इस उम्र में मैं भगवत चिंतन उपासना ध्यान इस समय इसमें सब समय लगाना चाहती हूँ, लेकिन एकाग्रता नहीं हो पाती, तो मन की एकाग्रता कैसे हो?
मन की एकाग्रता का मूल साधन है लक्ष्य की प्राप्ति, वो मुझे करनी है। संसार में रहो, परिवार में रहो, सबसे प्यार प्रेम भी रखो, पर लिप्त नहीं हो उसमें। जो लिप्त हो जाते तब मन भटकता है। बहुओं को काम दे दिया, बेटों को काम दिया, कर लो, आप प्रभु चिंतन में रहो, लक्ष्य वो बनाओ। हम वानप्रस्थ हैं, अभी हमें प्रभु प्रेम प्रभु भक्ति ही करनी है बस। उसमें रहते भी न्यारे रहो राजा जनक के मिसाल।
आज ही कार्यक्रम में हमारे अनुभवी बुजुर्गों ने अपने मन में उमड़ने वाले कुछ सवालों के जवाब जाने हमारी बेहद अनुभवी दीदी जी से। सर्वप्रथम तो मैं दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और उसके बाद हमारे आज के सभी मेहमानों, सभी बुजुर्ग सदस्यों, सभी आदरणीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का समय समाप्त होने चला है, अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।